और इस बार का विषय होगा ययाति महाराज का चरित्र। किस तरह से घर गृहस्थी में आसक्ति महाआसक्त कह सकते हैं व्यक्ति, कैसे उसने अपने जीवन में भगवान को प्राप्त किया, तो हम इसमें एक लव स्टोरी भी है, तो वो हम अब चर्चा चालू होगी तब आपको पता चल जाएगी। जिस तरह से शरीर धारियों की मनुष्यों की छह इंद्रिया होती है, उसी तरह से महाराज नहुष के छह पुत्र थे। उन छह पुत्रों का नाम है यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। स्वाभाविक ऐसा होना चाहिए था कि नहुष महाराज के बाद जो उनका सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था यति, वो राजा बने। परंपरा तो यही रही है, लेकिन यति ने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। क्यों? प्रश्न पूछ सकते हैं कि राज्य कौन सा राज्य? सारे पृथ्वी का राज्य। एक देश का मुख्यमंत्री या एक राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री नहीं, संपूर्ण भूमंडल का राज्य स्वीकार करना यति महाराज ने कहा नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? यति महाराज जानते थे कि यदि वे मैनेजमेंट में लग गए या फिर राजनीति में चले गए तो भगवत प्राप्ति को भूल जाना पड़ेगा। कि जो व्यक्ति ऐसे कारण में जो राज्य के दाव पे एक बार फंस जाता है, मैनेजमेंट में फंस जाता है, तो उसको बहुत कम समय मिलता है कि वो भगवान का चिंतन करे, कि भगवत भक्ति करे। एक तरह से देखा जाए तो वो अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है। इसलिए यति महाराज ने बुद्धिमानी लगाकर कहा कि नहीं, मुझे नहीं स्वीकार करना है राज्य को। आत्म साक्षात्कार जो है वो तो मनुष्य जीवन का सब कुछ है, उद्देश्य है। कि मनुष्य शरीर अगर मिला है तो किस लिए प्राप्त हुआ? भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। कि ऐसे कितने सारे योनियों में हम लोग घूमते रहते हैं, उसमें तो भगवान की प्राप्ति करने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि आप सोचेंगे कि यार हम लोग मनुष्य योनि में है तो स्वर्ग के देवताओं के, स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत सुना रहे थे, तो श्रीमद भागवत महात्मा में कथा आती है कि देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर सुखदेव गोस्वामी के पास आ जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये हम लोग ये जो अमृत का घड़ा है ये महाराज परिषद को पिला देंगे तो इससे वो तक्षक के मारने के बाद भी जीवित रहेंगे और इसके बदले में आप हमें भी कथा सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी ने आदेश दिया कि इनको पहले यहाँ से भगा दो, क्योंकि ये साधारण अमृत की तुलना कृष्ण कथामृत से कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से इनमें वो अधिकारी नहीं है कृष्ण कथा सुनने का, इसलिए उनको सुखदेव गोस्वामी ने भगा दिया। तो जो लोग सत्वगुण में रहते हैं केवल वही लोग गंभीरता से भगवत प्राप्ति के बारे में विचार करते हैं सत्वगुण। जो लोग रजोगुण में होते हैं, जो लोग तमोगुण में होते हैं, वे लोग इंद्रिय तृप्ति में या भोग के कारण इस तरह से लिप्त रहते हैं कि वो चाह कर भी भगवान के बारे में सोच नहीं पाते। तमोगुण रजोगुण में है, अच्छा खासा सारा सब प्रकार का सुख सुविधा में लिप्त है, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, मॉल में जाना है, यहाँ खाना है, वहाँ खाना है, पिक्चरें देखनी है, पार्टीज में जाना है, कि कहाँ इसके पास टाइम है भगवान को प्रणाम करने के लिए, भक्ति करने के लिए। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी विशेष उल्लेख करते हैं कि विशेष करके ऐसे भोगों के कार्य में तो ठीक है, लेकिन विशेष करके जो राजनीति में घुसता है उसके लिए तो भगवत प्राप्ति भूल जाना चाहिए उसको, उसको तो संभव ही नहीं है। एक तरह से वो अपने मनुष्य जन्म को जो सिद्धि है उसको खो बैठता है। मनुष्य जन्म की सिद्धि क्या है? भगवान को प्राप्त करना, उसको खो बैठता, मतलब कोई स्कोप नहीं उसके जीवन में। तो हम लोग विचार करेंगे कि हम लोग कौन से परमहंस लेवल पे हैं, हम लोग भी सारे रजोगुण तमोगुण में ही हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यदि आप लोग रजोगुण तमोगुण में है तो कोई बात नहीं, यदि आप लोग भागवत का आश्रय ग्रहण करेंगे, भागवत को सुनेंगे, तो रजोगुण में हो या तमोगुण में हो आपका उद्धार निश्चित है। महाराज परीक्षित भी एक राजनेता थे, नेता थे ना, तो राजनीति उनको करनी पड़ती थी, वो भी राजनीति में लिप्त थे, लेकिन अपने जीवन के अंत में उन्होंने महानुभाव महाभागवत महामुनि सुखदेव गोस्वामी का आश्रय ग्रहण किया। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गया है, स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुवांग मनोभिर ये प्राश्य शोजित जितोस्प्यासी तैस त्रिलोक्यम। कोई चाहे सत्वगुण में हो, कोई चाहे रजोगुण में हो, कोई चाहे तमोगुण में हो, कोई किसी भी गुण में हो, यदि नियम पूर्वक किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण करता है तो भव बंधन से छूट जाता है। यह है भागवत का महिमा। आप किसी की गुण में, किसी भी गुण में हो, आप भागवत के संपर्क में आइए तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो नहुष महाराज एक स्पेशल पर्सनालिटी थे। नहुष महाराज कुछ समय के लिए स्वर्ग के इंद्र बने थे। जब वृत्रासुर के प्रसंग में, वृत्रासुर के प्रसंग आपने सुना होगा कि किस तरह से इंद्र को शाप मिला, इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, तो इसलिए इंद्र जो है वो 1000 वर्ष तक मानसरोवर में एक कमल के तंतु के बीच में आकर छुपा हुआ था। उसी बीच में देवताओं ने महाराज नहुष को सहायता के लिए बुलाया कि महाराज नहुष आप श्रेष्ठ है, आप क्षत्रिय है, आप शूरवीर है, आप हमारे आप इंद्र बन जाइए। तो देवताओं के रिक्वेस्ट करने पर महाराज नहुष जो थे वो क्या बने, इंद्र बने। अब इंद्र बने, अब उनकी नियत थोड़ी बदल गई, पोस्ट पोजिशन आ गया तो उनकी नियत बदल गई। नियत कैसे बदली, वो सोचने लगे कि यदि पोस्ट इंद्र का है, मैं इंद्र हूँ, तो इंद्र की पत्नी भी मेरी पत्नी होगी। तो उन्होंने इंद्र की जो पत्नी थी सची उसको कहा कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती हो। तो उन्होंने प्रपोजल डाला कि नहीं तुम मेरे साथ रहा करो और मुझे तुम्हारा संग चाहिए। तो सची इस समय अपने गुरु जी के पास जाती है और गुरु से कहती है कि गुरु महाराज मैं इस दुविधा में फंसी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसको मैसेज दे देना कि ठीक है मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ, बस सप्तऋषियों की पालकी में बैठ के आ जाना। अभी 7 ऋषि सप्तऋषि जो महान ऋषि है, सूर्य पूरे ब्रह्मांड के महान तेजस्वी ऋषि है, वे लोग जब तुम्हें पालकी में बैठकर लाएंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तब मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें कुछ वास्तव में गुण है। तब जो नहुष महाराज थे उन्होंने सोचा वाह इतनी सी बात, सप्तऋषि हाजिर हो। तो सप्तऋषि ने कहा ये पालकी है, मैं पालकी में बैठ रहा हूँ और आपको मुझे ढोकर मुझे सची के पास ले जाना है। तो उन लोग अपने, कभी ऋषियों ने पालकी तो उठाई नहीं होगी, तो अपने 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 अलग अलग तरीके से बेचारे प्रयास कर रहे थे, तो इतना स्लो चल रहे थे। और ये नहुष महाराज जो थे इतने कामुक हो गए थे कि उनको तो मिलना ही मिलना था, तो सर्प कर रहे थे शीघ्र चलो। तो गलती से उन्होंने जोश में आके लात मार दी, अगस्त्य ऋषि को लात मार दी कि सर्प अगस्त्य। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा जरा पालकी नीचे रख दो, तो उन्होंने पालकी नीचे रख दी और कहा अच्छा सर्प इसी समय जाओ और सर्प बन जा। तो वो जाके सर्प बने थे नहुष महाराज। तो नहुष महाराज के सर्प बनने के बाद जो, तो यहाँ का पोस्ट भी, जो पृथ्वी का पोस्ट भी था वो भी खाली हो गया। तो वहां पर सम्राट बने यति के छोटे भाई महाराज ययाति। तो आज का जो ये 4 दिन हम लोग इन्हीं के जीवन चरित्र के बारे में सुनने वाले हैं, कैसे इन्होंने भगवान के धाम को प्राप्त किया। महाराज ययाति कि जो छोटे भाई थे, 4 छोटे भाई थे, उनको अलग अलग दिशाओं का राज्य उन्होंने दे दिया और खुद ने 2 विवाह किए और सारे पृथ्वी के राजा बनकर रहे। तो 2 विवाह किससे किए, एक विवाह किया शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से, और दूसरा विवाह किया वर्षकोरवा की सुपुत्री शर्मिष्ठा से। तो जैसे ही महाराज परीक्षित ने यह सुना कि क्षत्रिय का विवाह ब्राह्मण के बेटी से, ब्रह्मर्षि भगवान काव्य क्षत्र बंधुश्च नाहुषा, अरे ये तो ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य जी की बेटी और ये क्षत्रिय का, ये क्षत्रिय ये कैसे हो गया? राजन्य विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोम का, इस तरह का जो विवाह है प्रतिलोम विवाह है। प्रतिलोम मतलब जो गड़बड़ है, ऐसा ऐसा विवाह नहीं होता नॉर्मली, ऐसा विवाह कैसे हो गया? और शुक्राचार्य जी कैसे मान गए? शुक्राचार्य जी तो देव गुरु है, असुरों के जो गुरु है, ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है, उन्होंने कैसे ये स्वीकार कर लिया? तो परीक्षित महाराज के हृदय में ये इच्छा हो गई कि वो जाने, इसलिए सुखदेव गोस्वामी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे डिटेल में समझाइए कि ऐसा क्या हो गया जिससे कि ययाति महाराज के, जो ययाति महाराज और देवयानी के बीच में विवाह कैसे हो गया। वैदिक पद्धति के अनुसार क्षत्रियों का क्षत्रियों के साथ विवाह और ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के साथ विवाह होना स्वाभाविक। लेकिन यदि वर्णों में कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो दो प्रकार का होता है, एक तो अनुलोम विवाह और दूसरा है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या है? ब्राह्मण लड़का है और क्षत्रिय लड़की है, तो वो जो विवाह होता है उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। लेकिन क्षत्रिय लड़की है, लड़का क्षत्रिय लड़का है और ब्राह्मणी लड़की है, तब उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं और सामान्यतः इसको वर्जित कहा गया है, ये अलाव नहीं किया शास्त्र में। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य जी ने ऐसा इस विवाह को अनुमति कैसे दी, ये जानने के लिए महाराज परीक्षित उत्सुक थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दानवराज वर्षकोरवा की बेटी शर्मिष्ठा एक दिन अपने गुरु पुत्री देवयानी के साथ, देखिए अभी इन लोगों का संबंध आपको पहले समझ लेना चाहिए। शुक्राचार्य जी राजा वर्षकोरवा के पुरोहित थे, ठीक है। राजा वर्षकोरवा की बेटी का नाम था शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य जी की बेटी का नाम था देवयानी, और स्वाभाविक ये समवयस्क थे तो मित्रता थी, साथ में घूमते थे, साथ में खेलते थे, सब जगह मॉल्स में तो नहीं जाते थे लेकिन विहार करने तो निश्चित जाते थे, तो लोग घूमते रहते, साथ में घूमते थे। तो हुआ एक बार ऐसी सारी सहेलियां, एक बार सब सारी सहेलियां जंगल में, उनके जो राजा का जो महल था उसमें बहुत सुंदर वन था, बगीचा था, और उसमें ये सारी सहेलियां घूमने के लिए निकल गई, और वहां पर एक सुंदर सरोवर भी था, और सरोवर कैसा था, सुंदर सुंदर पुष्प उसमें लदे, सुंदर सुंदर पुष्पों से लदा हुआ सरोवर था, और उस सरोवर में कमल खिले हुए थे, कमलों पर भौरे मंडरा रहे थे, और उसमें जो सुगंध निकल रही थी उससे वातावरण इतना सुंदर बन गया था कि इन सबकी इच्छा है सहेलियों की कि जरा स्नान कर लेते हैं, जल विहार कर लेते हैं। अब इन लोगों ने अपने सारे वस्त्र उतार के रख दिए और सारे सहेलियों ने एक साथ अंदर प्रवेश किया और एक दूसरे पर अलग अलग प्रकार के जल क्रीड़ाए करने लगी। ठीक उसी समय वहां पर पार्वती जी के सहित भगवान शंकर जी बैल पर से वहां पर आ रहे थे, और जैसे ही शंकर जी और पार्वती जी को देख लिया, ये जो सारी स्त्रियां थी ये सारी नग्न नहा रही थी, तो सब डर गई कि नग्न नहाना अपराध है और यदि शिव जी देख लेंगे तो निश्चित रूप से शाप दे देंगे। तो शायद इन लोगों को वो नल कुबेर और मणिकर्ण की कथा शायद पता होगी, उस कारण से इन लोग डरे हुए थे। तो ये लोग तुरंत बाहर आ गए और उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए, और वस्त्र धारण करने में क्या हुआ कि शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के साड़ी धारण कर ली। अब ये सिचुएशन को भी समझना चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन थी,
अब इसमें एक दूसरे के कपड़े बस अपने कपड़ों के अपने आप को ढकना था, शिव जी के कोप से बचना था, इसके लिए इमरजेंसी सिचुएशन थी, बाहर आए सब लोग और सब लोगों ने जो हाथ में कपड़ा आया वो पहन लिया। अब हुआ क्या कि देवयानी शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी का साड़ी पहन ली। अब देवयानी को बड़ा क्रोध आ गया। अब देवयानी अब स्त्रियों को क्रोध आया, अब दोनों स्त्रियों के बीच में झगड़ा है। जरा गाली गलत सुनिए लोगों का। देवयानी कहती है, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर दिया है। राम राम, जैसे कुत्तिया ऐसे कुत्ती यज्ञ का हविष उठा ले वैसे इसने मेरी साड़ी पहन ली। अरे ऐसा इतना बड़ा क्या काम कर दिया कि कुत्तिया जिससे कि यज्ञ का हविष उठा ले वैसे उसने मेरी साड़ी कुत्ते के साथ तुरंत तुलना कर दी। अरे हम लोग ब्राह्मण है, ब्राह्मण हम लोग कोई साधारण थोड़ी है। इस पृथ्वी के हम लोग ज्वेल्स है, इस पृथ्वी के हम लोग शिरोमणि है हम लोग। अरे हमारी हम लोग अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि करते हैं। हम लोग हमारे हृदय में सदैव भगवान को धारण करते हैं। अरे हमने ही, हम ब्राह्मणों ने ही, अरे अरे शर्मिष्ठा कुत्ती सुन, हम ब्राह्मणों ने ही संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्गों का निर्देश किया है। वैदिक मार्गों का प्रचार जो है इन ब्राह्मणों ने किया है। बड़े बड़े लोकपाल देवराज ब्रह्मा जी शिव जी ये बड़े बड़े लोकपाल हमारे हमारे सामने झुकते हैं, हमारी पूजा करते हैं। अरे इन लोकपालों की बात छोड़ो, ब्रह्मा शिव जी की बात छोड़ो, भगवान विश्वात्मा भगवान श्री हरि भी हम लोगों को आराध्य मानते हैं, हम लोगों की पूजा करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स। अरे हम लोग को हमारी पूजा करते हैं, हम उनके इष्ट देव है। और तुम क्या हो, तुम्हारे औकात क्या है? इस तरह से गाली देने चालू कर दी देवयानी शर्मिष्ठा को। फिर हम लोग भृगुवंशी है और भृगुवंशियों में भी सर्वश्रेष्ठ भृगुवंशी है। अगर अभी अपने आप को भृगुवंशी से जोड़ते हैं, और भृगुवंशी क्या है, भृगुवंशी ऐसे है कि साक्षात भृगु भी भगवान ने इनकी पूजा की थी। अब कैसे, एक प्रसंग है कि एक बार बहुत बड़ा साधुओं का समाज जुट गया था, और साधुओं के समाज में ये आपस में चर्चा हो रही कि तीनों लोकों में ब्रह्मा शिव और विष्णु में श्रेष्ठ कौन है। इन तीनों में बहुत बड़ी चर्चा हो गई थी, तो सब ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया, भृगु जी को, कहा कि आप जाइए और तीनों जगह की तीनों लोगों की परीक्षा लीजिए और आ जाइए और हमको बताइए। तो भृगु जी ने परीक्षा लेने का एक अनोखा तरीका अपना लिया। वे गए पहले तो ब्रह्मलोक। अब भृगु जी जो है ब्रह्मा जी के पुत्र है, और स्वाभाविक रूप से जब पिता के पास जाते हैं, विशेषकर ब्रह्मा जी जैसे पिता, तो स्वाभाविक रूप से पहले तो दंडवत प्रणाम करते हैं। उस समय भृगु जी ने कोई प्रणाम नहीं किया, गए और पूछे ब्रह्मा जी कैसे आप, ठीक है, कोई प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी का मुंह लाल, तो भृगु जी समझ गए कि मुंह लाल हो गया, बस मैंने प्रणाम नहीं किया तो इनका मुंह लाल हो गया, ये तो सुप्रीम नहीं हो सकते। तो शिव लोक में जाते हैं, कैलाश जाते हैं। कैलाश में जाते हैं तो शिव जी अपने भाई को आते हुए देख के खड़े हो जाते हैं। आइए आइए भृगु जी, आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। तो भृगु जी बोलते हैं, अरे साले नीच, हट जा, दूर हट जा, नहाता नहीं कभी, सब हड्डियां गले में पहनता है, सांप गले में धारण करता है, तू मुझे मुंह जैसे ब्राह्मण को छूना चाहता है, चल दूर हट दूर हट। तो शिव जी को इतना गुस्सा आ गया, शिव जी ने त्रिशूल उठाया, लगे भृगु जी को मारने के लिए। तब पार्वती जी चरणों में गिर पड़ी, कहेगी कि आपके भाई है, ब्रह्मा जी के पुत्र है, थोड़ा कोई मजाक कर दे तो आप इतने क्यों नाराज हो रहे हैं। वो तो पार्वती जी ने बचा लिया, दूसरे दिन हेडलाइन आ जाती है कि भृगु डेड। अब जाते हैं वैकुंठ, भृगु जी चले जाते हैं वैकुंठ में। वैकुंठ जाते तो भगवान सोते रहते हैं, तो भृगु जी दरवाजे से चालू कर देते हैं, ये साला हमेशा सोता रहता है, गर्भोदक्षाई शिरोदक्षाई कारणोदक्षाई सब शाही 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 सब सोते ही रहते हैं। गए और सीधे भगवान के छाती पे लात मार दी, और जैसे ही भगवान के छाती पे लात मार दी, भगवान तुरंत उठ के खड़े हुए और भृगु जी के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं उठ कर खड़ा हो जाता, आपको आपके लिए आपको लेने के लिए वैकुंठ के द्वार पर आ जाता है। तो भगवान ने भृगु जी को अपने आसन में बिठा दिया और उनके चरणों में गिरे और उनका पाद प्रक्षालन किया और कहा कि मेरे कठोर हृदय में आपके ये सुकमल कोमल चरण चरण लगे होंगे, इसलिए मुझे दुख है इस बात का, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो जैसे भगवान का ये स्वभाव देख लिया तो भृगु जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे कि ये है सूर्यतम सर्व भूतानाम, ये है समस्त हृदयों में रहने वाले भगवान श्री हरि, यही हम सबके है। तो भृगु जी ने भगवान श्री हरि से कहा कि उनकी स्तुति की और वहां से चले और सबको आके कहा कि द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड इज लॉर्ड श्री हरि। तो यहां पर देवयानी कहती कि हम ऐसे भृगु जी के वंशज है और तू सारी कौन है असुर, तू जरा अपनी अवतार देख, तू तेरे पिता असुर हा? और दूसरी बात यह है कि तू हमारी तुम्हारी दासी, तू दासी, तेरे पिता दास हमारे शिष्य, तो स्वाभाविक रूप से तू भी दासी हमारी, तो आप तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी साड़ी पहन ले। अब इतनी कोई गाली अगर कोई स्त्री सुन ले अपनी तो बर्दाश्त करेगी वो, अब शर्मिष्ठा बोलने लगी। शर्मिष्ठा बोलती है, अब शर्मिष्ठा को इतना क्रोध आता है कि उसको उसके परिवार को सबको गाली दी थी उसने, शर्मिष्ठा को इतना क्रोध आता है तो अपने ओठों को दबाते हुए एकदम क्रोध के मारे वो बोलती है, जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे के बाहर हमारे डाले हुए अन्न की प्रतीक्षा करते रहते हैं ना, वैसे तू और तेरा बाप हमारी तरफ हमेशा ताकते रहते हैं कि कब हम लोग कुछ दे और तुझे तुम लोग उसको ग्रहण करो, ऐसा नहीं है बता? क्या तुम्हारे पिता और तुम, हम लोग इंतजार नहीं करते कि कब हमारे यहाँ से दक्षिणा मिलेगी और वो दक्षिणा से फिर तुम अपना जीवन निर्वाह करोगे, तो ये तुम्हारी औकात है। इस तरह से शर्मिष्ठा और इन दोनों के बीच में गाली गलौज होने लगा। वास्तव में कौओं के साथ तुलना, जैसे कौवे जो होते हैं उनका आहार क्या है, जो गृहस्थों के घर से जो झूठन होता है वो जब कई जगह गिर जाता है तो उसको खा कर वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो यहाँ पर जो शर्मिष्ठा थी उन्होंने शुक्राचार्य जी की तुलना किसके साथ की, कौवे के साथ की, कि तुम लोग हमारे यहाँ से जो झूठन मिलता है या हमारे यहाँ से जो धन मिलता है उससे तुम अपना गुजारा कर रही हो, तो तुम्हारी औकात यही है कि तुम कौवे और कुत्ते के समान हो जो हमारे डाले हुए अन्न पर जीते हो, और तुम क्या बात करती हो, साड़ी पहनी तो क्या हुआ, हमारी दी हुई साड़ी तो है वो, तुमने कौन सा जाकर अपना कमाया है, हमारे पैसे से तुमने साड़ी खरीदी है। इस तरह से बड़ी कड़वी बात करते हुए शर्मिष्ठा ने देवयानी के जो अंग पर जो कपड़े थे वो जबरदस्ती उतार लिए और उसको एक कुएं में ढकेल दिया, नग्न अवस्था में शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में ढकेल दिया। अब कुएं में देवयानी अकेले पड़ी हुई थी, संयोगवश वहां पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति वहां पर शिकार खेलते हुए उसी जंगल में घूम रहे थे और उनको प्यास लगी थी, और प्यास लगते लगते वो उसी कुएं के पास आए जहां पर देवयानी अंदर पड़ी हुई थी, और जैसे ही इन्होंने देवयानी को देखा वो भी नग्न अवस्था में, तो उन्होंने पहले एक राजा थे, धर्मपरायण राजा थे, ऐसे कि साधारण कामी पुरुष नहीं थे, ऐसा नहीं कि नग्न स्त्री को देखिए विचलित हो गए, नहीं, उन्होंने पहले तो अपना दुपट्टा डाला और उसको पहले ऊपर खींच लिया, और स्वाभाविक में उसको ऊपर खींचते वक्त तो उसने उनका हाथ पकड़ लिया होगा। अब हाथ पकड़ लिया तो देवयानी ने कहा कि प्रभु हे वीर शिरोमणि, यदि आपने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो पकड़े रहिए, ध्यान रखिए कि कोई और इसको ना पकड़ पाए। ये धर्मपरायण राजा थे, कोई साधारण पुरुष नहीं थे, इनको धर्म क्या है भली भांति इनको ज्ञान था। तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न ये पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम किसकी पुत्री हो, बाकी की सब बात तो बाद में करो, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किसकी संपत्ति हो, और यहाँ पर क्या कर रही थी, तो ये सब बताओ। तब देवयानी ने सब कुछ धीरे धीरे करके सब कुछ उनको बता दिया और देवयानी कहने लगी कि देखिए स्वामी, देखिए प्रभु, कि कुएं में मेरा गिरना और स्वाभाविक रूप से आपका यहाँ पर आना और आपको मुझे यहाँ से निकालना, तो ये हमारा तो किया कराया नहीं है ना, ना आपका किया कराया है, ना मेरा किया कराया है, ये तो देव की इच्छा से हुआ है, भगवान की इच्छा से हुआ है, हमारा जो मिलन है वो भगवान की इच्छा से हुआ है। अच्छा तुम किसकी पुत्री हो? मैं शुक्राचार्य जी की पुत्री हूं। हे भगवान, शुक्राचार्य जी की पुत्री हो, असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हो, तब तो वो हाथ जोड़ के थोड़े दो कदम पीछे हो गए, कहे कि नहीं पंगा नहीं लेना, अगर पंगा नहीं लिया तो पता नहीं शाप भी दे देंगे, फिर भी अजगर बिजगर बनना पड़ेगा, एक तो मेरे पिता वैसे भी अजगर बने हुए हैं, तो मुझे और अजगर नहीं बनना है, तो दो कदम पीछे हो गए। कहे कि तो कहने लगे कि मुझे आपसे ही विवाह कर, मेरा विवाह एक क्षत्रिय से ही होना निश्चित है, लेकिन तुम तो ब्राह्मण ही हो, मैं क्षत्रिय हूं, हमारा विवाह संभव नहीं है। तो वे कहने लगी कि अगर मेरा विवाह तो ब्राह्मण से भी संभव नहीं है, मेरा विवाह होना है तो क्षत्रिय से ही संभव लिखा हुआ है। मतलब कैसे? एक बार बृहस्पति के जो पुत्र थे कच्छ, ये एक बार मेरे पिता शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या को सीखने के लिए आए हुए थे, और वहां पर जब सीखने के लिए आए थे, तब विद्या खत्म होने के बाद जब ये लौट रहे थे, उस समय मैं इनसे आसक्त हो गई थी, इनका जब ये हमारे आश्रम में रहते थे, इनका व्यवहार देख के, इनका आचरण देख के, इनका जो ज्ञान देख के, इनसे मैं प्रभावित हो गई थी और इनसे विवाह करना चाहती थी। तो जब ये जाने के लिए तैयार हुए, तो मैंने इनको कहा कि हे कच्छ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो कच्छ ने ये जानकर मना कर दिया कि ये तो गुरु की पुत्री है, ये तो मेरे लिए गुरु, जिस तरह से मेरे लिए गुरु शुक्राचार्य जी मेरे लिए पूजनीय है, वैसे इनकी पत्नी भी पूजनीय है और इनकी सुपुत्री भी पूजनीय है, तो मेरे लिए ये तो परम आदरणीय है, तो मुझे, मैं तुमसे विवाह करने की तो सोच भी नहीं सकता। तो उन्होंने मना कर दिया। तो देवयानी को क्रोध आया, देवयानी ने कहा कि मेरे पिता के द्वारा मिली हुई तुम्हें सारी विद्या नष्ट हो जाए, तुम भूल जाओगे तुरंत। तो कच्छ को भी गुस्सा आया, कच्छ ने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी शाप दे दिया, तुम्हें भी कोई ब्राह्मण वरण नहीं करेगा, तुम्हारा विवाह क्षत्रिय से ही होगा। तो इस तरह से देवयानी अपनी स्थिति को इनके सामने रख रही है, इनके सामने महाराज जयाति के सामने रख रही, ताकि वो उसको स्वीकार करे। अभी ययाति ययाति महाराज तो शास्त्र जानते थे, धर्म जानते थे, और वे समझ रहे थे कि ये भोग जो है, मतलब ये देवयानी जो है, वो तो स्वाभाविक रूप से प्रारब्ध के अनुसार मुझे प्राप्त हुई है, तो ऐसे ही इसका तिरस्कार कर देना मेरे लिए योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनका उन्होंने भी कहा ठीक है, मेरा मन भी इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। पहले के जो पूर्व के जो राजा लोग होते थे, इतने धर्मपरायण होते थे कि किसी भी स्त्री में उनका चित्त नहीं जाता था। जैसे एक उदाहरण आता है रामायण के प्रसंग में, जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता जी इस जनकपुर में गए थे और वहाँ पर बगीचे में टहल रहे थे, वे आए ही थे सीता का विवाह उत्सव में भाग लेने के लिए, सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। तो उस समय सीता अपने सहेलियों के साथ उसी बगीचे में थी और भगवान श्री राम और लक्ष्मण उसी बगीचे में टहल रहे थे। पर जब सीता जी को भगवान श्री राम ने देखा, तो उनका चित्त स्वाभाविक रूप से सीता जी में चला गया। तब वे लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, मेरा चित्त ऐसे किसी स्त्री में नहीं जाएगा, यदि मेरा चित्त सीता में जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये तुम्हारी भाभी बनने वाली है। तो इस तरह से धर्मपरायण राजा हुआ करते थे। उसी तरह से महाराज ययाति विचार कर रहे थे कि मेरा चित्त अगर इसमें जा रहा है तो उस और स्वभाव प्रारब्ध के अनुसार ये भोग मिला हुआ है तो इसको मुझे मना नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो विवाह पहले ज्योतिष गणना पहले के जमाने में छोड़ दीजिए, कुछ 50 साल पूर्व तक विवाह मतलब ज्योतिष की गणना के अनुसार ही विवाह हुआ करता था। ऐसा नहीं होता था कि कहीं से कहीं लड़की मिले, कहीं मिल जाए आंखों में आंखें और जब वो लव एट फर्स्ट साइट, हाँ तो ऐसा कोई प्रकार था ही नहीं। विवाह माता पिता या वरिष्ठ लोग तय करते थे। वो भी कैसे तय करते थे? कुंडली मिलाकर, ज्योतिषों की गणना के हिसाब से सारा स्वभाव मैच होता है कि नहीं। क्योंकि अभी तो भले मैच हो जाएगा, क्यों मैच हो जाएगा? क्योंकि अभी मेंटल लेवल पे प्रेम है, हृदय से प्रेम है ही नहीं, आकर्षण है। तो वो आकर्षण कुछ समय के लिए रहता है, जब आकर्षण खत्म हो जाता है तो वो डिवोर्स एट फर्स्ट साइट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो ज्योतिष गणना के अनुसार पहले विवाह, कितना भी सुंदर कितना भी धनवान लड़का क्यों ना हो और कितनी रूपवती स्त्री क्यों ना हो, लड़की क्यों ना हो, लेकिन विवाह इन लोगों का ज्योतिष गणना के अनुसार ही हुआ करता था। जब तक उन लोगों के गुण नहीं मिलते थे तब तक उनके माता पिता ये खुद भी विवाह नहीं करते थे। मनुष्य का जो जन्म होता है वो उसमें 3 कोटियां रहती है, जैसे कि मनुष्यगण, देवगण और राक्षसगण। पूरे संसार में इसी 3 श्रेणियों में पूरा मनुष्य का समझ बटा हुआ है। कोई मनुष्य देवगण के होते हैं, मतलब देवताओं जैसा उनका स्वभाव होता है, कोई मनुष्य असुरों जैसा उनका स्वभाव होता है। अभी देवता पति पत्नी यदि देव और असुर है तब तो देवासुर संग्राम तो होना ही होना है। शुरुआत में भले ना हो लेकिन बाद में तो देवासुर देव और असुर कितने समय तक साथ में रह सकता है? नहीं रह सकता, तो उनमें तो झगड़ा होना ही होना है। इसी प्रकार प्रतिलोम और अनुलोम विवाह की भी गणनाएं होती है। मुख्य भाव यह रहता है कि ये जो गृहस्थ जीवन है, ये पति पत्नी का जो गृहस्थ जीवन है, ये लंबे समय तक चले। इसमें बीच में कोई झगड़ा ना हो, कोई इन दोनों में कोई क्या कहते हैं एक दूसरे को छोड़ ना दे, इसलिए ये सारी चीज़ें देखी जाती थी पहले कि उन दोनों का स्वभाव मैच होता है कि नहीं, गुण मैच होते हैं कि नहीं, और उस हिसाब से विवाह हुआ करता था। और पहले के विवाह इतने लंबे समय तक चलते थे कि पति अगर मर जाता है तो इतना प्रेम होता था स्त्री में अपने पति के लिए कि उसके मरने के बाद वे खुद सती हो जाती थी, और यदि सती नहीं होना होता था तो आजीवन विधवा रहती थी। इस तरह से वे लोग अपना प्रेम एक निश्चय रहती थी एक ही पुरुष के साथ। लेकिन आजकल ऐसी स्थिति बहुत कम देखने मिलती है। मानव समाज जो है वो पशुओं की दिशा की तरफ जा रहा है, पशु जैसा आचरण करता है। लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि महाराज ययाति जो थे उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। अभी प्रश्न उठ सकता है कि इनका भी तो विवाह प्रतिलोम विवाह है, इनका भी तो ऐसे विवाह हो रहा है। हाँ हो रहा है, लेकिन अपनी तुलना महाराज ययाति के साथ नहीं करनी चाहिए। महाराज ययाति ये धर्म को जानते थे, शास्त्र को जानते थे, धर्मपरायण व्यक्ति थे, और ऐसे धर्मपरायण व्यक्ति का चित्त कभी भी कामुक नहीं होते थे, किसी स्त्री में सहज सुख नहीं आता था। इनका देवयानी में चित्त जाना ये भगवान की इच्छा से ही होता था, भगवान की इच्छा से ही हुआ है विवाह जो है, भगवान की इच्छा से ही हुआ है। इसलिए देवयानी और ययाति महाराज का मिलन हो चुका है। अभी इनका आगे क्या होगा ये हम लोग कल देखेंगे। आगे इनके जीवन में कल इनका विवाह हो जाएगा, विवाह होगा परसों, कल बच्चे भी हो जाएंगे। परसों इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा कि पति पत्नी और वो उस तरह से देवयानी और महाराज जयाति और तीसरी कौन इसको आप कल पता चल जाएगा आपको। लेकिन इन तीनों के बीच में जो होता है उसके लिए आपको आना पड़ेगा तीन दिन। एक ये है भागवत की लव स्टोरी, लेकिन इसका अंत भगवान की प्राप्ति है। किस तरह से एक व्यक्ति जिसने दो दो विवाह किया है, ऐसा व्यक्ति जो 2400 घंटे इंद्र तृप्ति में लिप्त रहता था, ऐसे व्यक्ति के हृदय में वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ और इसने कैसे सब कुछ छोड़कर भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल वन में चला गया, तो क्या क्या घटना इसके इस व्यक्ति के जीवन में घटी कि इसने अपने दो पत्नियों को, सारा साम्राज्य को, सब कुछ छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए क्यों चला गया ये व्यक्ति, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।